Тебе, о, करुणा नियोग परिचय के आधार से अब हम गुणस्थानों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने गुणस्थान किसे कहते हैं इसकी बात की थी, उसकी डेफिनेशन याद है आपको? बोलो। वेरी गुड, आप बोलो। गुणस्थान कहते हैं, तो ये गुणस्थान ये अवस्था है, पर्याय है, ये तो हमने देखा था। और उसमें जीवों के जो परिणाम है संसारी जीवों के, गुणस्थान ये संसारी जीवों में हमने विभाजित किए 14 में है, तो उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद, क्योंकि जीव के परिणाम अलग अलग होते हैं। चौथे गुणस्थान में भी जीवों के भाव अलग अलग प्रकार के, पांचवे में भी तो हमने देखा था कि 11 प्रतिमा वालों के भाव अलग अलग होते, फिर भी उनका एक एक ग्रुप बनाया और ऐसे 14 हमने डिविजन्स की। तो उसने पहले गुणस्थान का नाम क्या देखा था, और पहले में से चौथे में जाने वाले के चौथे का नाम क्या था? अविरत सम्यक। ये दो तो याद आए। कोई कोई जीव गिरकर दूसरे में आ जाता है, तो दूसरे का नाम क्या देखा? सासाधन सम्यक। और कोई जीव चौथे से गिरकर तीसरे में आ जाता है, उससे ऐसे मिक्स टाइप का अलग ही प्रकृति, अलग ही उसके भाव हो जाते हैं, परिणाम होते हैं, उसको कहते हैं सम्यक मिथ्या या मिश्र गुणस्थान इसे कहते। तो चार हमने देखे, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों अज्ञानी है और तत्व श्रद्धान है उनका, और चौथे वाले को तत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वो सम्यक जीव है। चारों ही असंयमी है, अभी किसी को भी व्रत नहीं है, यानी पहले से चौथे में जाने वाले के उस जीव के भी अभी व्रत नहीं है, क्योंकि व्रत के परिणाम कहाँ से शुरू हो जाते हैं? पांचवे से, वहाँ अनुव्रत धारण करता है जीव। तो ये सारे ही असंयमी है, फिर भी जैसे मिथ्यात्वी जीव को असंयम में मजा आता है, चौथे वाले को भी अभी व्रत नहीं है, फिर भी उसको ऐसा अंदर से लगता है अरे मुझे कुछ व्रत नहीं है, व्रतों में रुचि नहीं है उसको, राग में रुचि नहीं है, फिर भी ऐसा अंदर से भाव आते ना उसको, कह रहे मैं कब मुनि बनूंगा। तो ऐसा ही ये सारा हमने स्वरूप देखा था कि मिथ्यात्व अवस्था में पूरे मोक्ष मार्ग का निर्णय पहले होना चाहिए कि सम्यक्त्व क्या चीज है, अनुव्रत क्या होते, उस जो है जीव कैसा है, उसको कितने कषायों का अभाव है, मुनि की पोजीशन क्या होती है, कितने कषाय का अभाव होता है, वितरागता कैसी है, अभी कषाय यानी संगलन कषाय शेष है, उसका कार्य क्या चल रहा है, ये सारी बातें पहले से ही हमें निश्चित करनी है। देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, इसमें थोड़ी भी कहीं अभिप्राय में गलती होगी तो ऐसे गलत मान्यता के साथ सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी किसी को बाहर सुधारना नहीं है, ना किसी को थर्मामीटर लेके जांचना ये मुनि है कि नहीं, ये समय दृष्टि है कि नहीं है। हमारे मान्यता में हमको ठीक करना है अपनी मान्यता, अन्य इसका कोई अन्य प्रयोजन है नहीं। सामने भले समय दृष्टि जीव दिखे नहीं दिखे, मुनि दिखे नहीं दिखे, देव तो अभी है साक्षात है नहीं है, वे तो विराजमान है महाविदेह में, फिर भी उनका स्वरूप अपने ज्ञान में ठीक तरह से बैठना चाहिए, ये महत्व की बात है। अब आज 11वां प्रकरण देखते हैं, गुणस्थान आरोहण, देश विरत गुणस्थान। आरोहण यानी चढ़ना। कल तो हमने देखे थे पहले से चौथे में कैसे आता है जीव, तो उसने पात्रता देखी थी, यानी सम्यक्त होने के पहले जीव को क्या क्या होना, वो तो सदाचार में गिनाया जाएगा, उसको व्यवहार सम्यक्त भी नहीं कहेंगे। सम्यक दर्शन होने के बाद उस जीव की जो देव शास्त्र गुरु संबंधी श्रद्धा है, सात तत्व संबंधी, यानी हमने जो नौ पदार्थ देखे ना उसमें पंचाध्याय में, उसकी जो श्रद्धा है उसकी, उसको हम फिर व्यवहार कहेंगे, उसको व्यवहार सम्यक्त भी कहेंगे या वो व्यवहार में डाल देंगे। तब तक ना व्यवहार है ना निश्चय है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक, क्योंकि व्यवहार और निश्चय ये किसके भेद है? ज्ञान के भेद। वो सम्यक्त्व को हम ज्ञान की अपेक्षा कह देते हैं, व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक दर्शन ऐसे दो सम्यक दर्शन है ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार निश्चय ये ज्ञान के भेद है, तो ये कथन के भेद है। तो सम्यक दर्शन को हम दो रूप से कथन करते हैं, है ना, इसलिए वो राग को भी सम्यक्त्व कह देते हैं। राग तो सम्यक्त्व है नहीं है, वीतरागता ही सम्यक्त्व है, वीतरागता ही रत्नत्रय है, फिर भी उसको हम व्यवहार से रत्नत्रय कहते हैं। किसको? ये जो अभी सम्यक्ति जीव को जो राग बाकी है उसको हम, यानी कथन की अपेक्षा उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये कथन में भेद है, सम्यक्त्व में कोई भेद नहीं है। तो ऐसा नहीं मानना कि अभी हमको व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया और फिर बाद में निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक ही वस्तु में एक ही समय में ये दोनों चीजें लगती है, जिसको निश्चय नहीं उसको व्यवहार भी नहीं है, एट ए टाइम हो गए दोनों ही, क्योंकि ये कथन एक ही वस्तु पर एक ही समय पर होते हैं, ये मूल चीज ख्याल में लेना। तो देखो अभी हमारा प्रकरण शुरू हो जाता है, गुणस्थान संबंधी सब ज्ञान हमें आगम के आधार से प्राप्त हुआ, ये महत्व की बात है। आगम सर्वज्ञ भगवान ने बताई हुई बात है, सर्वज्ञ भगवान का ये उपदेश है ना, जब शुरू में शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ संस्कृत में ऐसे कहे कथन पद्धति है कि या इस ग्रंथ के मूल कर्तार श्री सर्वज्ञ भगवान है, फिर उसके बाद उसके कर्तार गणधर देव है, फिर उसके बाद अनेक आचार्य है और उनके परिपाटी से ये आज तक हमें ये उपलब्ध है। यानी ये सर्वज्ञ ने बताया हुआ सारा उपदेश है, किसी ने अपने मन से कल्पना से बनाई हुई बातें नहीं है, क्या कहते हैं ना, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने अपने दिव्य केवल ज्ञान के द्वारा जाने, तो इतनी स्पष्टता, इतने उसमें जो सूक्ष्मता बताई है गुणस्थानों में या अन्य चीजों में, तो ये सारी सर्वज्ञ के अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए मूल में क्या है, ये सारा ही आगम, ये आगम से ये सारी बातें हमने जानी है और आगम ये सर्वज्ञ कथित होता है। यह आगम जिनेन्द्र भगवान के दिव्य ध्वनि द्वारा प्राप्त हुआ और परंपरा से आचार्यों को प्राप्त हुआ, परंपरा ने उनसे गंधर्व को, गंधर्व से फिर अन्य आचार्यों को, उनसे फिर और आगे चलते चलते आया, आचार्यों ने इसे लिख कर रखा है। जिनेन्द्र भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान द्वारा वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान करके, जिनेन्द्र भगवान ने भी ये नियम बनाए नहीं है, जानकर बताए हैं। कोई भी जो हम सिद्धांत सीखते हैं, ये क्रमबद्ध पर्याय का हो या सर्वज्ञ का हो या जो कोई अभी गुणस्थानों की जो हम चर्चा करेंगे, तो ये उन्होंने जाने हैं कि ऐसे ऐसे जीवों के अलग परिणाम होते हैं, ऐसी ऐसी उनकी अवस्थाएं होते हैं, और जानकर बताए पश्चात ही उसका उपदेश दिया है। आचार्य और अनेक गृहस्थों ने आगम ज्ञान के आधार से स्वसन्मुखता पूर्वक आत्मा का अनुभव किया। अकेले शास्त्र पढ़ने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तो पढ़कर उसमें जो बातें बताई है, पेज नंबर 88 है, मिल गया। हाँ, पांचवे गुणस्थान की आज बात चलेगी। दूसरा पैराग्राफ, आचार्यों और अनेक गृहस्थों ने आगम ज्ञान के आधार से, क्योंकि ये जो मूल उपदेश है वो ज्ञानी का होता है, सर्वज्ञ भगवान का ये मूल उपदेश है, वो आगम में प्राप्त है, तो शास्त्र के द्वारा या अन्य ज्ञानी के उपदेश के द्वारा फिर स्वसन्मुखता की, हमने देखी थे सम्यक तो प्राप्त होता है, तो उसने पांच लब्धि देखी, याद है कौन कौन सी बोलो, और करण लब्धि, ये लब्धि होती है। तो जो ऐसे संगी पंचेंद्रिय जो ये सारी हमने डिटेल में देखे थे कल बात, अभी हम नहीं दोहराएंगे, तो ये जो हमने देखे, तो उसके बाद करण लब्धि जो है स्वसन्मुखता पूर्वक, देशना लब्धि तक तो ये उपदेश ज्ञानी से सुना, फिर वो उपदेश ऐसा ही है ऐसे अपने तत्व निर्णय किया, वो प्रायोगिक लब्धि हो गई, और फिर स्वसन्मुखता में आत्मा को डायरेक्ट जानने लगा, तो आत्मा का अनुभव किया और अन्य जीवों को उसका उपदेश दिया, यानी अकेले एक का सुनकर दूसरे को नहीं दिया, बीच में अपने भी कल्याण कर लिया, अपना भी अनुभव कर लिया। हम जब किसी वक्ता से यह उपदेश सुनते हैं, तब वह मात्र उसका ही उपदेश नहीं होता, परंतु आगम ग्रंथों का उपदेश होता है, क्योंकि जो वक्ता बताता है वो आगम की बातें कर, वो कोई अपने मन की बातें नहीं कर रहा है, यानी वो उपदेश किसका है, सर्वज्ञ भगवान का है, आगम का है, वो वक्ता का नहीं है, वो वक्ता की तरफ मत देखना, ये आगम से मिलता है कि नहीं है ऐसा देखना, कि आगम के विरुद्ध है कोई बात, तो आगम से है, यानी ये डायरेक्ट हमें सर्वज्ञ भगवान से प्राप्त हुई चीज है। आचार्यों का उपदेश होता है, सर्वज्ञ भगवान का उपदेश होता है। वक्ता यदि आत्मज्ञानी हो तो वह उपदेश विशेष कार्यकारी होता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा के साथ उसमें भी बल आता है उसकी वाणी में कोई ऐसा, कि वो अधिक कार्यकारी होता है। जिसको नहीं है वो भी आगम की बात बताता है, वो भी अपनी खुद की बात नहीं बताता। सम्यग्दृष्टि जीव भी आत्मा के स्वरूप का जो उपदेश देता है वह आगम के आधार से ही देता है। देखो ये महत्व की बात है, कि अध्यात्म किसमें अध्यात्म संदेश में भी ये बातें आई है ना, ये जो आगम का उपदेश है, सम्यक दृष्टि भी जो हमें क्या कहते हैं, हमें सम्यक दृष्टि जीव चाहिए, क्यों, हमको उपदेश मिलेगा सच्चा, वो कुछ आत्मा में देख देख कर उपदेश नहीं देता, तो वो भी कहाँ से उपदेश देता है, आगम के आधार से देता है, क्योंकि उसको ये जो इस विश्व में छह द्रव्य है, प्रत्येक में अनंत गुण है, ये कहाँ से जाना उसने, आत्मा में देख कर, आगम से, आत्मा के असंख्यात प्रदेश अंदर देखकर उसने बताए, ये आगम से बताए, तो ये सारा ही जो उपदेश देता है वो आगम के आधार से ही देता है। शुद्धोपयोग में उसे आत्मा के अनंत गुण या असंख्यात प्रदेश तो नहीं दिखते, उसको अनंत गुण दिखने लगे तो क्या होगा, ये एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा करता है, ये अभेद अखंड एक रूप उसने आत्मा का अनुभव किया, उसमें उसको ये एक दो तीन चार ऐसे गिनते नहीं बैठता, वो ये पूरे का अखंड अनुभव है। और जो केवल ज्ञानी है वे तो भेद से भी जानेंगे अभेद से भी जानेंगे, सारा वो उनको प्रत्यक्ष ज्ञान है, ख्याल में आते हैं। आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद, देखो एक कंडीशन है, पहले आगम का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वो यथार्थ होना चाहिए, कि आगमानुसार ज्ञान यथार्थ होने के बाद यानी सही निर्णय करने के बाद स्वरूप में एकाग्र होने पर उसे निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, यानी सम्य दर्शन होता है, यानी क्या होता है, पहले वो आगम से ज्ञान करता है आत्मा संबंधी, फिर स्वरूप में एकाग्र होता है, हम जो अभी देख रहे हैं ना पंचाध्याय में विषय चल रहा है, नव तत्व से पहले आत्मा को जानेगा, और इन नव तत्वों में ही वो विशेष रूप है, उसी में जो सामान्य है उस सामान्य की दृष्टि करेगा, यानी उसमें एकाग्र हो जाएगा, और तब उसको आत्मा का अतीन्द्रिय अनुभव आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी, और वही है सम्यक दर्शन का समय। तो उसमें उसे निर्विकल्प, निर्विकल्प ने दोनों तरफ से लेना, निर्विकल्प ने अभेद भी और निर्विकल्प ने किसी भी राग से रहित, जब आत्मा का अनुभव होता है तब ये शरीर कहीं पता ही नहीं चलता है, राग द्वेष भी कहीं कोई क्रोध मान माया लोभ में से कोई परिणाम वहाँ उसके है नहीं, क्योंकि सारे अबुद्धि पूर्वक में चले जाते हैं। ज्ञान का भी वो लक्ष्य वहाँ नहीं है, वो अपना शुद्धात्म सामान्य का लक्ष्य करता है ना, तो उसमें विशेष वाली कोई पर्याय है ही नहीं है ना, उसका लक्ष्य नहीं है। दृष्टि इटसेल्फ पर्याय है, उसका लक्ष्य करने वाली स्वयं पर्याय है, परंतु वो अपने को नहीं देखते हुए वो सामान्य को देखती है, तब उसमें निर्विकल्प आनंद का अनुभव आ जाता है। आत्मस्वरूप और मोक्ष मार्ग के बारे में वह निशंक रहता है। ये खाली निशंकित गुण यानी निशंका नहीं करना ऐसे नहीं है कि उसके कोई, ये सारा स्पष्ट दिखाई देता है पूरा मोक्ष मार्ग उसको। ऐसे लगता है ये देखो ये ऐसा पूरा मोक्ष मार्ग, उसमें स्वरूप में कहीं उसको ऐसे संदेह नहीं है, पूरा उसमें एकदम ध्यान में बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसको कहते हैं निशंकित। यानी उसको ऐसे शंका हो सकती है कि अरे ये तो मेरु पर्वत या ऐसा है तो ये अकृत्रिम चैतन्य की रचना कैसी होगी ये मुझे स्पष्ट नहीं है, उसके बारे में उसको हो सकता है। परंतु ऐसे जो प्रयोजनभूत तत्व है, आत्मा का अनुभव कैसे करना, पांचवें छठे सातवें गुणस्थान का मुनि का देव का स्वरूप कैसे, उसमें बारे में उसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल क्लियर है उसका नॉलेज, वो ज्ञान तत्व निर्णय उसका सही हो गया है, उसे पूर्ण विश्वास रहता है। बेटियों, अध्यात्म का अध्ययन करने वालों को अपना विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। गुणस्थान सीखने के बाद यह बात ज्ञान में लेनी चाहिए कि चौथा और पांचवा गुणस्थान गृहस्थों का है। देखो ये विवेक की बात चल रही है, क्योंकि अभी समाज में ऐसा चलता है कोई समय दृष्टि है कोई व्रति है तो उसके पीछे वो पूछने लग जाते हैं, व्यक्ति विशेष की महानता आती है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीवों के बारे में हमें बिल्कुल आदर होना ही चाहिए, परंतु वो पूजने योग्य नहीं है। पूजने योग्य तो देव शास्त्र और गुरु होते, तो ये विवेक की बात यानी किसको कितना आदर देना। जो हमें ये विद्या सिखाते हैं, जिसको लौकिक हम विद्या गुरु कहते हैं, उनका भी आदर उचित आदर होता है, परंतु उन्हें तो वहाँ आरती तो नहीं उतारेंगे, उनकी तो स्तुति भक्ति तो ऐसे नहीं करेंगी जैसे भगवान की कहते करते। इसलिए वहाँ लिखा है कि विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। यानी चौथा पांचवा गुणस्थान किसका है? गृहस्थों का है। मुनि के गुणस्थान छठवा सातवा और ऊपर के होते हैं, अरहंतों का तेरहवा और चौदहवा गुणस्थान होते हैं। दीपाजी, अरहंतों के कौन से गुणस्थान है? तेरह और चौदह। अभी हमने नाम नहीं सीखे, अभी हमने खाली चार के नाम देखे, अब यहाँ से हम आगे सीखेंगे, क्योंकि अभी ये प्राथमिक जीवन के लिए लिखा है ना, तो जितना जितना हम सीखे उतने के नाम बताए, चौदह के नाम अभी गिनाए नहीं है, वो आगे चलकर गिनाएंगे। इनमें से देव गुरु, गुरु यानी मुनि, ये विद्या गुरु का और ये गुरु अलग है। अभी हम कहते गांधी स्वामी ने हमें ये सिखाया अध्यात्म सारा, तो उनको गुरु जो भी कहते, परंतु वो मुनि वाले गुरु नहीं है, वो विद्या गुरु है, क्योंकि उन्होंने ये अध्यात्म विद्या हमको सिखाई है। परंतु मोक्ष मार्ग के मुनि जो होते हैं वे और ये अलग है, वे तो चौथे गुणस्थान वाले। तो मुनि और शास्त्र ही वंदनीय पूजनीय और अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होने पर भी वह मुनि समान पूजनीय नहीं होता। कंपेरिजन ख्याल में आई ना, मुनि का गुणस्थान ऊपर का है और वे पूजनीय होते हैं। हाँ, उनका विद्या गुरु के नाते, उनका यानी जो गृहस्थ समय दृष्टि है या अन्य जो है, तो विद्या गुरु के नाते योग्य आदर सत्कार नमस्कार आदि करना योग्य है। परंतु अभी हम अपने माँ बाप के भी नमस्कार करते हैं, परंतु उनको मोक्ष मार्गस्थ मानकर नहीं नमस्कार कर रहे, अपनों से जो बड़े है, सम्य दृष्टि भी अपनों से बड़े जो मिथ्यात्वी है उनको भी नमस्कार करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि ये मिथ्या दृष्टि और मैं सम्य दृष्टि में इनको नमस्कार नहीं करूंगा, तो लौकिक विनय उसके चलेगे, भले राजा हो, अपना ऊपर का कोई अधिकारी हो या कोई अपने से बड़े रिश्तेदार हो, वो सबको नमस्कार भी करेगा झुककर। वहाँ ऐसा नहीं कहेगा कि ये क्या ये मेरे से कम है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो लौकिक उसका जो यथा योग्य आदर विनय है वो चलेगा, उसमें उसके अभिप्राय में कोई बाधा नहीं आती। परंतु अभी देखो, नमस्कार करना योग्य, परंतु अपने अभिप्राय में यदि हम ऐसे व्यक्ति को देव और मुनि से उच्च मानते होंगे तो वह हमारी विवेकहीनता होगी। आजकल ऐसी कुछ विकृतियां देखने में आ रही है और अनेक लोग व्यक्ति पूजा का आडंबर मचा रहे हैं। ये चलता है, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ कुछ कुछ चल रहा है अभी यहाँ बम्बई में भी। परंतु उसके कारण वे स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनके अपने सम्यक्त्व प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं। यानी उनकी स्तुति करेगी तो तुम्हारा क्या जाता है? अरे वो विवेकहीनता है और ये मोक्ष मार्ग में बाधा है, इस बात का उन्हें पता नहीं है। देवगति के देव चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। सौधर्म इंद्र लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि है और अगले भव में ही मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसा नियम है, जो सौधर्म इंद्र है वो एक भवावतारी है, एक मनुष्य जन्म अगला धारण करके वो नियम से मोक्ष जाने वाले हैं। लौकांतिक भी असंख्यात वहाँ देव है, फिर भी वहाँ से चय कर वो अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं। तो हम उनको मंदिरों में स्थापना कर पूजन करते हैं, उनकी नहीं करते ना? ये सब बहाना बनता ना, वो समय जिससे है कि वो देव है, समोचरण में आते थे इसलिए हम उनको बुलाते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं। ये चौथे गुणस्थान वाले को अर्घ्य नहीं दिया जाता। जहाँ कहीं भी हाँ पूजा करने की बोले, समोचरण की आप रचना कर रहे हैं या विधान होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ उनको कहते कि वरुण देव आप आना, ये सौधर्म देव आप आना, ये वायु देव आना, ये सारे आह्वान करते हो। वो भी भक्त है ना, अभी आप यहाँ पूजन करेंगे कोई विधान करेंगे तो अन्य भक्तों को बुलाते कि नहीं बुलाते? तो हम पूरे हिंदुस्तान में पत्रिकाएं भेजते हैं कि आओ हमारे यहाँ ये इंद्रध्वज विधान होने वाला है, आप पधारो, भगवान की महिमा है ना वो। तो उस तरह से उनको आह्वान करना अलग बात है और फिर वो उन्हीं को अर्घ्य देते हैं, ऐसे चलता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ कि लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि और अगले भव में मोक्ष जाने वाले, फिर भी हम उनकी पूजा नहीं करते। अब यहाँ लिखा नहीं है, फिर भी ये तो धर्मेंद्र पद्मावती के बारे में जो चल रहा है समाज में, उनको भी अर्घ्य आदि देते, उनको भी आदर करते, भगवान के पास बिठाते। अरे वो भी भक्त है भगवान। जब धर्म पर संकट आता है, मुनि पर संकट आता है, तो उनका उपसर्ग दूर करना हर एक श्रावक का कर्तव्य है और उन्होंने भी किया था। जैसे पूर्व में तो सांप थे और मरकर वहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? भवनत्रिक में गए वो, तो वहाँ जन्म से तो सम्यक दृष्टि थे नहीं, बराबर ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि मरकर भवनत्रिक में जन्मता नहीं, यानी सांप की उस पर्याय में उन्होंने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया था। अब हो सकता है कि अभी जो पर्याय चल रही है उनकी यक्ष जो है, तो वहाँ जाके उन्होंने सम्यक तो प्राप्त कर लिया हो सकता है, गारंटी नहीं है। परंतु होगा तो भी कितने गुणस्थान थी, उनका कौन सा गुणस्थान होगा? चौथा। और चौथे वाले को तो हम भगवान जैसी विनय नहीं करते उनके बाजू में बिठा कर, उनकी विनय करना भगवान का अभिनय है, अवर्णवाद हो जाता है। इंद्रबेन ख्याल आता है? भगवान जैसा हम उनको विनय करने जाते हैं, भगवान के बाजू में बिठाते हैं और वो क्या क्या चलता है वो तो आपको सबको मालूम है, समाज में क्या बातें चलती है, तो ये हम उनका अभिनय कर रहे हैं। तो और वो तो मोक्ष में जाने वाले है ही नहीं, अभी ये सौधर्म भी मोक्ष में जाने वाले, तो उनकी महिमा नहीं आती। और किसकी महिमा किसकी आ रही है अंदर से? धर्मेंद्र की भी नहीं, पद्मावती, क्योंकि हमारा कुछ भला कर देगा, वो पार्श्वनाथ का भला किया और हमारा क्यों नहीं करेगी? राग हाँ राग का राग है जीवन के, पता ही नहीं उनको हम किसकी महिमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें उसका क्या फल मिल रहा है। मिथ्यात्व का पोषण करके हम क्या पाप की गठरी बांध रहे हैं और मानते हमने कुछ विशेष किया, क्योंकि एक करता है इसलिए दूसरा करता है, उसमें कोई विचारहीनता से कर रहे हैं, यानी बिना समझे कर रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं, इसका भी पता जीवों को नहीं है और सोचने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो सारा निपटा कर आगे अपना सारा दिन भर की महत्व की बातें करनी है ना, हमको रोटी पकानी है और पुरुषों को दुकान में जाना है। इसलिए चलो गुणस्थानों के अध्ययन से निश्चर व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है। देखो कहीं भी निश्चय को अध्यात्म की अपेक्षा से मुख्य हमेशा करते हैं, परंतु व्यवहार और निश्चय यथा योग्य जानना ही चाहिए। हमको व्यवहार जानना है, हम निश्चय वाले हैं, ऐसी बात नहीं चलेगी, क्योंकि निश्चय उसी को कहता है कि व्यवहार द्वारा जो बताया जाता है कि ऐसे से हमने अभी देखी ना 20 प्ररूपणाएं देखी, तो जीव को हमको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे, तो 20 प्ररूपणा के द्वारा अभी हमने देखी कौन सी गति वाला है, कितनी इंद्रिय वाला है, कैसे काय है, उसके वेद क्या है, उसकी कषाय कितने, ज्ञान कैसा है, ये सारे के द्वारा हम उसका निश्चय कर देते हैं। हाँ ये जीव इस पोजिशन में अभी है, तो अभी तो पता चला हाँ ये मनुष्य जीव है और यहाँ ये शरीर के जहाँ ये शरीर दिख रहा है वहीं पर है, अन्यत्र नहीं है, ये तोता मैना में कहीं नहीं, ये झाड़ पर लटका हुआ अपना प्राण, तो ये यहीं पर है, तभी इसको कैसे ढूंढना है। तो फिर हम उसको व्यवहार में के द्वारा वहाँ भी वो सात तत्व बताते, नौ पदार्थ बताते, और फिर जीव का निश्चय किया जाता है, उसका अनुभव कैसा करना है वो बात बताई जाती है, तो हम व्यवहार को उड़ाए देंगे, कुछ होता ही नहीं, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसा है, अकर्ता है, चलो अनुभव कर लो, तो वो कहे कहाँ, तो वो कहाँ है क्या। हाँ तो बिना पहचान के हम कैसे अनुभव करें, क्योंकि अनादि से तो भ्रांति चली रही ना अपने स्वरूप के बारे में, तो पहले ये सारा निश्चय करते करते फिर उसका निषेध करके हम अनुभव कराते। तो ये इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों को अपनी बुद्धि द्वारा, अकेले हमने व्यवहार की परिभाषा रट ली, निश्चय की रट ली, दो चार उदाहरण रट लिए, तो ऐसा नहीं काम चलेगा, उसके बारे में सही निर्णय होना आवश्यक है। देखो ये हमेशा बात कहाँ पर आके रुकेगी, सही निर्णय पर। सही निर्णय होने के बाद अब और क्या करना है ऐसा प्रश्न नहीं पड़ेगा, वो सही निर्णय होने पर उपयोग अपने को पकड़ लेगा। तो ये सही निर्णय करने तक का ही उपदेश देंगे, बच्चे के सामने भोजन तैयार करेंगे, बहुत से बहुत तो मुंह में उसको निवाला डालेंगे, वो निगलना किसको है, उससे, वैसा ही है। ये तो सही निर्णय तक ला पहुंचाते हमें आचार्य पुरवार। तो अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है, उनका सुमेल अपने ख्याल में आता है, कौन से गुण स्थान वाले जीव के आचार विचार कैसे होते हैं इस बात का ज्ञान होता है, यानी गुणस्थान पढ़ने से ये सारी भ्रांतियाँ हमारी निकल जाती है। कोई कोई गृहस्थ में होते हुए भी अपने को आचार्य कहलाता, कोई भगवान कहलाते, कोई कहते हमको केवल ज्ञान हो गया, ऐसी चिट्ठियाँ आती है। कांजी स्वामी के पास भी आई थी, किसी ने कहा हमको केवल ज्ञान हो गया और हम आपको आपको बारह गुणस्थान दे देंगे। ये ऐसी जो फालतू बातें चलती है ना समाज में,
और आप हमारे खाने का प्रबंध करो हमारे।
हाँ हमको केवल ज्ञान है, आप प्रबंध कर लो खाने का, हम वहाँ आके आपको बारहवा गुणस्थान दे देंगे। अभी श्रीमद जी भी पांचवे गुणस्थान मूर्ति थे, उनके बारे में अभी आज चल के लोग कितने मनगढ़ंत बातें लिख देते कि वो सरोगी थे, वो केवली थे, या ऐसा ऐसा महावीर आके उनके हृदय में विराज होते, ऐसे कुछ भी बातें लिखते। ये तो ये करना नहीं और गुणस्थान के बारे में पता नहीं चलेगा तो अपने मन से ऐसी हवा में ये बातें होती रहेंगी, बिल्कुल बेस है, क्योंकि उसमें ये तो कहते हैं इसको धर्म का काटा है, इधर से उधर कहीं हिलने डुलने का चांस नहीं। क्योंकि अगर कोई कहते हाँ वो तो जन्म से समय दृष्टि है, समय दृष्टि थे, क्योंकि हमको करना नियोग का नियम मालूम है कि पंचम काल में कोई भी जीव जन्म से समय दृष्टि होता ही नहीं है यहाँ कर्म भूमि के पंचम काल में, तो ये उड़ा दिया ना उसको। ये जो ऐसी मान्यता होती करना नियोग में ऐसे बहुत सारे नियम है, तो एक एक नियम तो सामने वाला जीव कहाँ कितने पानी में ये बराबर पता चल जाता है। इसलिए हमें कोई इधर से उधर दिगाना दे, इसके लिए ये करना नियोग या गुणस्थानों का अभ्यास अति आवश्यक है। बनारस दास स्वयं ने लिखा है, उन्होंने उनका एक अर्धकथानक उन्हीं का है ना, उसमें लिखा है कि पहले कैसे अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी वो सत्संग का पोषण करें, गृहस्थ में घर में रहते हुए भी कपड़े उतार कर वो प्रैक्टिस करने लगे कि हम शुद्ध है बुद्ध है मुनि ऐसा मानने लगे। फिर जब उनका गुणस्थान का अभ्यास हुआ तो सही पता चला उन्हों कि गृहस्थ का ये समय दृष्टि का ऐसा स्वरूप है, मुनि का ऐसा स्वरूप है, तब ये सब भ्रांतियां चलती थी वो निकल गई। इसलिए समयसार नाटक के बाद उन्होंने गुणस्थान का एक अलग प्रकरण लिखा है जो मूल समयसार में नहीं है और समयसार नाटक में है। अपने अनुभव से उन्होंने जाना है ना कि गुणस्थान जब तक पता नहीं था तब तक ऐसी भ्रांति चल रही थी। यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखो कि उन आचारों यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुणस्थान नहीं बदलता। क्या कहा? देखो, पांचवें गुणस्थान वाला जो जीव होगा उसका बाह्य में अनुव्रत होगी, जो छठे सातवें गुणस्थान वाले जो मुनि है उनके बाह्य में 28 मूल गुणों के पालन करने वाले हो ऐसा उनका आचरण होगा ही, परंतु उल्टा नहीं होगा। रिवर्स इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा कि किसी ने मुनिव्रत अंगीकार किए इसलिए उनको अंतरंग में उतनी वितरागता है ही, उनका छठवां सातवां गुणस्थान है ही, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले गुणस्थान वाला भी वो देखा देखी आचरण अंगीकार कर देता है। अभी किसी ने अनुव्रत अंगीकार लिए, हमने अभी अनुव्रत देखे ना कि वो कौन कौन से है, पांच तो वो अनुव्रत है, फिर गुणव्रत, शिक्षाव्रत, तो वैसे उसने आचरण अंगीकार किया परंतु है वो पहले गुणस्थान वाला, तो उसके कारण उसका गुणस्थान ऊपर का नहीं होता। तो किस कारण होता है? अंतरंग में जितनी शुद्धि होती है उतना ऊपर ऊपर का गुणस्थान होता है, और जो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में बाह्य में भी वैसे ही आचरण होता है। ऐसे नहीं कि असंयम हो और वहाँ मुनि अवस्था प्रकट होए, नहीं, हम अंतरंग से तो शुद्ध है, बाह्य में कुछ भी चलेगा, वो तो शरीर की क्रिया है। या ऐसा अनाचार, ऐसी स्वच्छंदता नहीं होती, दोनों का बराबर मेल है। सुमेल कहते हैं कि बाह्य व्रतादिकों को पालन करने से गुणस्थान नहीं बदलता, परंतु अंतरंग में वितराग बढ़ने से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं। सम्यक्त की प्राप्ति भेद ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता द्वारा होती है। भेद ज्ञान यानी भेद करना, दो मिली हुई चीजें हैं, दो या अनेक, उसमें पहचानना किसमें किसमें, एक तो स्पार्टी स्व और दूसरी पर, इसको कहते हैं भेद ज्ञान या भेद विज्ञान। स्व क्या पर क्या है तो पहचाना, अभी स्व का निश्चित किया, अब क्या करना उसको जानते रहना। अकेले ये मैं स्व हूँ ये पर है इतना नहीं चलेगा। भेद ज्ञान के बाद अभेद रूप से यानी अभेद ज्ञान, अपना अभेद रूप से ज्ञान करना, उसको कहते एकांत्र होना, स्व को ही जानते रहना। ये जब होगा तब वहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो भेद ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता, स्थिरता कहो, एकाग्रता कहो, रममान होना कहो, लीनता कहो, चरना कहो, आत्मा में एक ही बात है, आत्म स्थिरता द्वारा होती है। उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुणस्थानों की, अभी सम्यक्त्व तो प्राप्त हुआ, अभी चौथे से पांचवे में कैसा जाएगा, उसके लिए क्या अलग विधि करनी पड़ेगी? हाँ, वैसे ही भेद ज्ञान, जब सम्यक्त्व प्राप्ति के पहले से भेद ज्ञान की धारा चालू होगी तो सम्यक्त्व होने के बाद भेद ज्ञान रुक जाएगा ना, कब तक चलेगा? केवल ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होता तब तक निरंतर भेद ज्ञान चलता रहेगा। ज्ञान पूर्ण रूप से अपने में स्थिर होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं कि ऊपर की गुणस्थान के अर्थात पांचवे सातवे से लेकर तेरहवे संयोग के वाली गुणस्थानों की प्राप्ति भी कैसे होगी? अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। यानी मार्ग पूरा एक ही है, अपने को पहचानो और अपने में जम जाओ, एकाग्र हो जाओ, या अपने को ही जानते रहो, इससे ही सम्यक्त होगा, इससे ही पांचवा गुणस्थान होगा, इससे ही मुनि के गुणस्थान प्रकट होंगे, इसी से श्रेणी चढ़ेगी, इसी से केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये करते करते बाह्य में यथा योग्य आचरण होता जाएगा, व्रत उपवास आदि सारे हो जाएंगे, जिस जिस भूमिका में है वैसे वैसे भाव सहज आएंगे, लाने नहीं पड़ते। अब दीपाली जैसी अभी जो लड़की है उसको तो ऐसा रटाना नहीं पड़ेगा, अरे बच्चा हो जाएगा, ये शादी करेगी तो तू अभी से प्रैक्टिस कर। जब कोई लड़की माँ बनती है तो बच्चे के प्रति प्यार कैसा करना उसको सिखाना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है, उस भूमिका में वैसे भाव सह जाते हैं। वैसे जो अभी चौथे में है वो मुनि हो जाएगी, अंतरंग वितरकता बढ़ेगी तो बाह्य में भी वैसे आचरण सहज पल जाएगा, वैसे भाव सहज आएंगे। वो राग भाव उस भूमिका के योग्य, भूमिका है वो जिस पोजीशन में है वैसे वैसे उसको सहज आते हैं। इसीलिए आत्मख्याति ग्रंथ में कहा है, आत्मख्याति किसने लिखा है दीपाली मालूम है? नहीं मालूम। आप चित्राबेन, चित्रा जी, आत्मख्याति यानी समय सार कलश, हाँ अमृतचंद्राचार्य, समय सार मूल ग्रंथ कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है और उस पर जो उसके टीका यानी उसका विश्लेषण एक्सप्लेनेशन संस्कृत भाषा में लिखा है। मूल ग्रंथ तो प्राकृत में अर्धमागधी में और उस पर संस्कृत में उन्होंने टीका ग्रंथ लिखा, उसका नाम है आत्मख्याति। तो आत्मख्याति ग्रंथ में कहा है भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, यानी यह इदम यानी यह भेद विज्ञान, भावयेत यानी उसकी भावना करो, किस तरह से अच्छिन्न धारया यानी निरंतर उसकी धारा बिना टूटे निरंतर उसकी भेद ज्ञान करते रहो, कब तक? तावत यानी तब तक, यावत यानी जब तक, यानी तब तक करते रहो, कब तक कि ज्ञानम पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, यानी ज्ञानम पराच्युत्वा ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान पर से हटकर पूर्ण रूप से ज्ञान में ही प्रतिष्ठित होता है, ज्ञान में ही पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है कायम के लिए। संस्कृत शब्दों का अर्थ तुम्हारे ख्याल में आ सके इसलिए एक एक शब्द अलग लिखा है, इसका अर्थ इस प्रकार है, सम्यक्त्व प्राप्त होने के पश्चात भी भेद विज्ञान अखंड यानी निरंतर तब तक भाना चाहिए, उसकी भावना तब तक करनी चाहिए जब तक ज्ञान परभावों से च्युत होकर, परभाव यानी क्या? पर पदार्थ के भाव आइंदुवे, परभाव यानी क्या? हाँ, पर पदार्थों को देखकर अपने में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं परभाव यानी राग द्वेष। तो परभावों से च्युत होकर अभी हमारा ज्ञान कहाँ अटक रहा है? राग द्वेष को जानने में, मिथ्यात्व अवस्था में तो उसको अपना मानता है, सम्यक तो होने के बाद अपना नहीं मानता, फिर भी उसको जानने में ज्ञान अटका हुआ है। अभी ये पंचादय में बात चल रही है उसी को वो बंद कहा, ज्ञान रागों राग को जानने में अटक गया है वही उसकी, और वो क्षीण हो गया, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है उसके कारण, वो अशुद्ध हो रहा है। तो ज्ञान जब तक उसमें प्रभाव से हटकर च्युत होकर यानी वहां से हटकर पूर्ण रूप से ज्ञान स्वभाव में कायम नहीं ठहरता, यानी वो पूर्ण रूप से कब ठहरेगा? जब ठहरेगा तब उसी समय केवल ज्ञान हो जाएगा। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक उसको भेद विज्ञान करना चाहिए। आत्मस्थिरता द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मस्थिरता द्वारा ही केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, यानी जिस मार्ग से सम्यक तो प्राप्त होगा उसी प्रोसेस द्वारा, उसी मार्ग के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, उसके लिए कोई अलग वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग और मोक्ष सब कुछ अंतरंग में ही आत्मस्थिरता द्वारा होता है, बाह्य आचरण और व्रतादि मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में मदद करेंगे यह मान्यता मिथ्यात्व है। वो व्रतादि छोड़ना नहीं है, व्रत तो आएंगे, जिस पोजीशन में जीव है जिस भूमिका में वैसे वैसे व्रत के परिणाम आएंगे, व्रत भी होंगे, वो धारण भी करेगा, निरतिचार बराबर पालन भी करेगा, परंतु ये मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद रूप है यह अभिप्राय गलत है, ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती। देखो इसको बराबर समझना, जब जब ऐसी बातें आती है तो लोग क्या समझते, देखो ये व्रत का ही निषेध करते, ये पुण्य का ही निषेध करते, ऐसे नहीं। पुण्य मुझे कार्यकारी है, राग मुझे लाभदायक है, ऐसी मान्यता ये मिथ्यात्व है। वो करता है, वो स्वयं कर रहा है, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय से शास्त्र ज्ञान से मुझे सम्यक होगा ऐसी अगर मान्यता होगी या शास्त्र सामने है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के कारण ज्ञान हो रहा है, ऐसी अगर मान्यता होगी तो वो निमित्त की दृष्टि है। ज्ञान की पर्याय अपने में से आती है, ज्ञान की स्वयं की योग्यता से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है और तब सामने उचित निमित्त होता ही है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। ये उपादान की दृष्टि जरूरी है। इसका कारण क्या है देखते हैं। शरीराश्रित क्रिया तो परद्रव्य की अचेतन की क्रिया है। देखो इसमें भी तीन बातें होगी, एक तो जीव के ज्ञानादि, फिर राग और शरीर की क्रिया, तीन है ना, एक ज्ञान की क्रिया, एक राग की क्रिया और एक जड़ की क्रिया। अब तीनों में हमको जिसका जो है उसको खाते में डालना है। तो क्या होता है, शरीराश्रित क्रिया जो उपवास है या विशेष बोलना है या भगवान को झुककर नमस्कार करना है या कोई भी क्रिया ले लो, तो ये किसकी क्रिया है, जड़ की क्रिया। तो शरीराश्रित क्रिया तो परद्रव्य की यानी पुद्गल की, अचेतन की क्रियाएं हैं, वे मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट कराने में कैसे कार्यकारी हो सकती है। व्रत के परिणाम अलग और शरीर के द्वारा अभी जो मुनि मुनि कैसे देख कर चलते हैं, अन्य ने ये जो समिति पूर्वक उनका सारा पांच समिति पालते हैं, तो उसमें जो शरीर की क्रिया है वो तो पुद्गल की क्रिया है बराबर, तो वो जड़ की क्रिया हो गई। तो जड़ की क्रिया से मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट होगा क्या, नहीं होगा ना। अभी आगे, वे मेरी क्रियाएं हैं ऐसी विपरीत मान्यता, वो शरीर की क्रियाएं बाधक नहीं है ना साधक है, शरीर की क्रिया मदद भी नहीं करती और रुकावट भी नहीं डालती। शरीर जो है वो सम्यक्त्व में बाधा नहीं डालता, केवल ज्ञान में भी बाधा नहीं डालता। केवल ज्ञानी को शरीर है कि नहीं है, हाँ दीपाली केवल है ना, अभी अरिहंत भगवान को शरीर है, तो शरीर होने से तो कोई बाधा नहीं है, यानी शरीर की क्रिया ना साधक है न बाधक है। परंतु क्या बाधा है कि वे मेरी क्रिया है, यानी शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानना, ऐसी विपरीत मान्यता सम्यक्त्व प्राप्ति में बाधक है। तो बराबर इसमें हमने देखा, ये शरीर की क्रिया है ना, चलो ये जड़ की क्रिया जड़ में डाल, फिर अभी उसके बाद व्रतादि करने का जो शुभराग होता है वह चारित्र गुण का विभाव है। अब ये राग की क्रिया पर आ जाए, राग है वो क्या है, मेरा स्वभाव है ना, क्या है, विभाव है। तो विभाव को विभाव रूप से जानना है, उसको हटाने की बात नहीं है। हम क्यों पहले, हाँ राग द्वेष तो कम करो, इतना क्रोध करते वो तो कम करो, क्या करना है, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जानना है, राग की क्रिया को ये विभाव है मेरा स्वभाव नहीं ऐसा जानना है, पहले इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो क्या कहते हैं कि जो व्रतादि करने का शुभराग होता है वो तो चारित्र गुण का विभाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है और उस पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, ये मुख्य बात है अपने में। अभी देव शास्त्र गुरु की भक्ति बहुत है अपने में, ऐसा अनुराग है, परंतु वो मेरा विभाव है और उतना ही मैं नहीं हूँ, इतना जानना है, इतना निश्चित करना है। मैं तो अभी मैं कैसा हूँ, अभी एक मुझ पर आना है। पहले तो शरीर की क्रिया, शरीर की हमने जड़ की क्रिया, अभी जो राग है वो विभाव है और उतना ही मैं नहीं हूँ, अब मैं कैसा हूँ अपना भी निश्चय करना है ना। ये तो सारा पर में डाल दिया, अभी मैं कैसा हूँ, तो मैं तो त्रिकाल यानी कायम रहने वाला है, तीन भूत भविष्य वर्तमान शुद्ध ध्रुव और अभेद हूँ, त्रिकाल हूँ और कैसा है, शुद्ध हूँ। ये कौन सा शुद्ध, अभी जो सामान्य को शुद्ध कहते हैं हम, पंचादेव वाली बात याद करना कि जो नव तत्व रूप है जो पर्याय है वो सारी अशुद्धता में डाल दी, और त्रिकाल एक जैसा रहने वाला, सामान्य में कोई चेंज नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, अभी उसको पर्याय की अपेक्षा मत देखो, मति शुद्ध अवधि मन परे केवल ज्ञान की अपेक्षा मत देखो, अकेले ज्ञान की अपेक्षा भी। तो ज्ञान तो हमेशा ज्ञान ही रहेगा ना, तो जीव तो हमेशा जीव ही रहेगा, कभी पुद्गल नहीं होगा, उसकी पर्याय मत देखना, उसमें जो सामान्य चैतन्यत्व है उसकी तरफ देखना, तो वो तो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है, اس کے انت گنوں میں جتنی کیپیسٹی وہ تو اتنی رہنے والی ہے, بھلے نگود والا جی ہو یا کیول جانی ہو, تو وہ تو اکھنڈ ایک جیسی ہے نا, اسی کو شدھ کہتے ہیں. وہ ایک روپ ہے, ابھید ہے, اس میں کوئی بھید نہیں. بھید اٹسلف اشدھی ہو جاتی ہے. جب جب ہم بھید کی درشٹی کرتے ہیں وہ تو اشدھتا ہو گئی ہے. بھید اپنے میں آتما کہے گا تو گیان ہے, درشن ہے, چارتر ہے, پرنتو بھید کی ہے نا, یہ اشدھتا ہو گئی. جاؤ ان کو ساروں کو بنا بھید پاڑے اکھنڈ روپ سے گرہن کرنا ہے. اس کو کہتے شدھ, اس کو کہتے ابھید, اس کو کہتے نروکلپ, اس کو کہتے ایک, اس کو کہتے ترکال. اس کی درشٹی کرنی ہے, وہ میں ہوں, اس میں میں پناہ ستھاپت کرنا ہے. اب یہ اپنے میں ہی جو راگ ہے نا, بھی دیو شاستر گرو کی بھکتی ہے اپنے میں, ابھی ورتمان میں ودیمان ہے. اس کا لکش چھوڑ کر یہ جو سامان سوروپ ہے اس کا لکش کرنا ہے. پریا کو نکالنا نہیں ہے, اس کو گون کر دینا, اس کی طرف دیکھنا مت. تو میں تو ترکار شدھ دھروا ابھید ہوں. راگ کو سادھک سمجھ کر کرنے یوگیہ ماننا اور کرنا, اسی طرح راگ کو بادھک سمجھ کر اسے ہٹانے کا یتن کرنا, ان دونوں میں راگ کو لانا یا ہٹانا ہم نے لکش کس کا کیا, راگ کا ہے نا. تو درشٹی تو راگ پر ہی رہتی ہے, اس کارن سوبھاؤ گون ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بھگوان کی بھکتی کرنی چاہیے نا, یا بھکتی چھوڑ کر ہم کو آتما میں لین ہونا ہے نا, تو دونوں میں ہم نے کس کی طرف دیکھا, راگ کی طرف, جس کو لانا یا ہٹانا. یہ پاپ نہیں کرنا چاہیے نا, کس کا نام لیا آپ نے, تو ہم یہ ہٹانے لانے میں ہم کو اس کی طرف دیکھنا تو پڑے گا. تو یہاں کہتے تب اس کو دیکھتے تو اس کا ارتھ ہی رہے ہم نے سوبھاؤ کو گون کیا. اب سوبھاؤ کو جانتے رہو تو راگ کو ہٹانا ہی نہیں پڑتا, وہ گون ہو گیا. تو اس کو کہتے اس کو ہم نے گون کیا, اس کا ناش کیا, اس کو چھوڑ دیا, ایسی بھاشا آتی ہے شاستر. آتما کو گرہن کرنا اور راگ کو چھوڑنا, کیسے چھوڑو گے, ہاں اس کو گون کیا, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ ابھی ہمارے گیان میں آیا ہی نہیں, تو ہم نے اس کو کہتے وہ ناش کر دیا. یہ تو راگ کی طرف دیکھ کر ناش کرنے جاؤ, یہ تو ایک سمے کی پریا ہے. ابھی گیان میں آتے آتے آنے کے بعد اسنکھیا سمے کے بعد گیان میں آتی ہے, تو اس کا ناش کیسا کرنا, اور ایک سمے میں سوئم ناش والی ہے تو اس کو کیا ناش کرنا. تو ہمارا گیان اپنے کو جانتے ہوئے پرکٹ ہوا, تب راگ کو جانا ہی نہیں, اس نے راگ کی طرف دیکھا ہی نہیں, اس نے گون کر دیا. اسی کو کہتے راگ کا ناش کیا. راگ کو چھوڑو اور آتما کو گرہن کرو کا ارتھ یہ ہوتا ہے. مکھیا کرو اس کو, گون کرو نا اس کو, مکھیا کرو اس کی بات ہی مت کرو, یہ ہو گیا گون کا. اس کی بات کرنے جائے نا اس کو گون تو کرنا ہے نا, تو پھر بھی اس سے الگ سے رہا. ایک کو مکھیا کیا تو اس میں دوسرے کی گونتا آ گئی, کیونکہ ہم نے پہلے اس کو ایکسپٹ کیا ہے ویوہار میں کہ اپنے میں راگ ہے, ویبھاؤ ہے, میں اتنا نہیں ہوں, میں تو سوبھاؤ روپ ہوں, ایسا پہلے ہم نے نشچت کیا ہے. یعنی پہلے اس کو ایکسپٹ کر کے ابھی سوبھاؤ کو مکھیا روپ سے جانتے ہیں, تب ہم نے اس کو گون کر دیا. اس کو پورا ابھاؤ نہیں مانا, جیسے انیہ متی مانتے ہیں کہ آتما تو ترکال شدھ ہے, وہ ایسا ہے, شدھ ہے, بدھ ہے, اکرتا ہے, گیاتا ہے, درشتا ہے, انیہ سارا متھیا ہے, ایسا نہیں ہے. پہلے ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور ابھی اس کے لکش چھوڑ کر آتما کو جانتے ہیں, تو وہ اپنے آپ گون ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں وکلپ چھوڑ کر نروکلپ ہونا, تو وکلپ چھوڑنا ہے, چھوڑنا ہے, چھوڑنا ہے, تو اس چھوڑنے کے ہی وکلپ چل رہے ہیں. تو وہ کب چھٹیں گے, کبھی نہیں چھٹیں گے. تو ابھی جس کو جاننا ہے ابھید روپ آتما کو, اس کو جانتے رہو تو وکلپ چھوٹ جائیں گے. یہ ایسا سہج ہے مارگ, پرنتو سوبھاؤ کو مکھیا کر کے ترکالی دھروا بھگوان آتما میں پناہ ستھاپت کر کے देखो ये क्या करना है, सम्यक को कैसे प्राप्त करना है, आत्मानुभूति कैसे, ये पूरे के पूरे एक एक शब्द में ये सारे बताया है। अभी तक हमने उसकी चर्चा करी, उसी चल रही कि स्वभाव को मुख्य करना है। अभी रात की हम बातें नहीं करेंगे, उसके गौण करना ही उसका अर्थ है स्वभाव को मुख्य करना। कि जो त्रिकाली ध्रुव जो अभी हमने ऊपर देखा था ना, उसी को शुद्ध कहा, उसी को एक कहा, उसी को अभेद कहा, उसको भगवान आत्मा कहा। तो ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या करना, अकेले जानना, कैसा जानना, मैंपना स्थापित करके कि यही मैं हूँ ऐसा स्थापित करना है मैंपना। जब आत्मा में एकाग्रता होती है तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए कितने उपवास करना पड़ेगा, दान भी लाखों का देंगे तो होगा ना आत्मानुभव, तो कैसे। तो ये जो सारा तत्व निर्णय करके अभी जो हमने त्रिकाल सामान्य रूप निश्चित किया उसमें यही मैं हूँ ऐसा उनको उसी को जानते रहे, जानते रहने की मुख्यता है। एकाग्र होना है क्या, उसी को जानते रहो। हमको कोई अच्छी चीज लगती तो हम उसी की तरफ देखते रहते ना, तो ये इसी को देखते रहे, इसी को जानना है। तब समित्व की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ, ध्रुव यानी कांस्टेंट, अभी कायम जो टिकने वाला है। अभी जो अनंत गुण है वो कायम टिकने वाले हैं कि नहीं है? आत्मा का ज्ञान गुण कैसा है, कायम टिकने वाला है। दर्शन गुण, श्रद्धा गुण, सारे अनंत गुण कायम टिकने वाले, पर्याय एक एक समय की। अभी अनंत गुणों का अभेद ले लो, उसमें भेद मत करो, भेद करने से उसको पर्याय कहते, भेद को ही पर्याय कहा है। अकेली वो एक समय वाली पर्याय उतना ही पर्याय नहीं, किसी भी अपेक्षा भेद करो वो पर्याय में जाएगा। असंख्यात प्रदेश का अखंड, ये एक हॉल ऐसा लेना, ये कितना फुट है कितना इंच है उसकी दृष्टि छोड़ देना, दृष्टि छोड़ना। वैसे ये अभेद एक अखंड क्षेत्र की अपेक्षा भी उसको अभेद ले लो। ऐसा जो अभेद अखंड जो है ध्रुव है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अनंत गुणों में जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान गुण है, उसकी फुल कैपेसिटी के साथ विद्यमान, तो उसको कहते ध्रुव, कायम रहने वाला। अखंड भी उसी को कहेंगे, ध्रुव उसी को कहेंगे, त्रिकाल उसी को कहेंगे, नित्य कहेंगे, एक रूप कहेंगे, एक सदृश कहेंगे, ये सारे का अर्थ एक ही है। उसको ही ज्ञायक भाव कहेंगे, उसको परम पारिणामिक भाव कहेंगे, उसी को कारण परमात्मा कहेंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि से करने से पर्याय में परमात्मा परम प्रकट होने वाला है। उसी को जानते रहे ना, उसको जानते रहने से सम्यक दर्शन होगा, उसी को जानते रहने से हम ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जाएंगे, और उसी को जानते रहने से पर्याय में परमात्मापना प्रकट होगा। इसलिए उसको कहते कारण परमात्मा। नाम अलग अलग आने से कोई घबराने की बात नहीं, एक बार उसका स्वरूप निश्चित किया तो सामान्य की बात हो रही है, और वही मैं हूँ तो उसमें सारा आ गया। पूछना आप, कोई भी शब्द आपको नहीं पता चलता तो पूछ लेना। हाँ, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। उस समय देह तथा योग्यतानुसार राग, योग्यतानुसार है जो चौथे वाला है, पांचवे वाला है, जो कोई है जो सबसे पहले मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने वाला है, उसका जो यथा योग्य राग है उसकी भी विद्यमानता होती है, परंतु अब दृष्टि उस पर नहीं होती, एक उसका ख्याल ही नहीं आता है। आत्मा में लीन हो जाता है तो शरीर है कि नहीं उसका पता नहीं चलता है, राग है कि नहीं, कौन सा है, क्या करे, कुछ उसके दृष्टि नहीं, उसका लक्ष्य नहीं है। हम एक लीन कर यहाँ टीवी में देखते तो कुछ वो कोई चिल्लाए, कोई अपने पुकारे, कोई अन्य बातें चलती तो उसका लक्ष्य नहीं लग जाता, हम उसी को जानने में लगे रहते। वैसे जब आत्मा की दृष्टि होती है उसमें अपनत्व हो जाता है तो शरीर है कि नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूप ही अपने को अनुभव चालू हो जाता है, तब ये बाकी कोई है नहीं है उसका कोई पता ही नहीं चलता। शरीर है, राग भी विद्यमान है, परंतु अभी सारा लक्ष्य कहाँ एकाग्र हो गया है, अपने ध्रुव भगवान यानी अपने को उस रूप अनुभव कर रहे हो, सामान्य रूप ज्ञान रूप अनुभव हो रहा है उसको, परंतु अब दृष्टि उस पर नहीं होती, अर्थात उनके प्रति स्वामित्व भाव या एकत्व नहीं होता। दृष्टि लिखा है ना, ज्ञान में भले आ जाएगा परंतु दृष्टि यानी उसमें अपनत्व नहीं है। शुभ भाव छोड़कर क्या स्वच्छंदी होना है, ऐसा प्रश्न कुछ लोग करते हैं। उनको लगता है ना कि स्वभाव है यह है छोड़ने योग्य है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये छोड़ेगा अभी और स्वच्छंद हो जाएगा, पाप में लीन हो जाएगा। जिसे शुद्धात्मा में एकत्व वर्तता है, जिसने अभी शुद्धात्मा में यह मैं हूँ ऐसा अपनापन स्थापित कर लिया है, उसकी पर्याय में स्वच्छंदता नहीं रहती, उसे तो अधिक उच्च कोटि के परिणाम आते। पहले जितने शुभ भाव आते थे अभी और अधिक शुभ भाव आते। मिथ्यापी वाले से ये चौथे वाले को शुभ भाव अधिक है, चौथे वाले से पांचवे वाले को शुभ भाव बढ़ते हैं, पांचवे वाले से मुनियों के शुभ भाव और उच्च प्रति के, उसकी क्वालिटी जो है वो और बढ़ती है। पहले तो अनुव्रति था, अब तो महाव्रति हो गया, तो शुभ भाव बढ़े के कमी हो, उच्च कोटि के हो गए ना। फिर भी मान्यता में क्या है, ये सारा है ही है। स्वसन्मुख परिणामों में जो विशुद्धता है वह तो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है, जिसको हम करण लब्धि कहते हैं कि आत्मा संबंधी वो विचार करते करते एकाग्र होता है तो वो भी शुभ भाव है, सबसे उच्च प्रकार का। देखो शुभ भाव के भी अलग अलग लेवल है, जैसे स्कूल खोलते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, कोई कुआं बांधता है, कोई किसी को पानी की व्यवस्था करता है या अन्य गरीबों को भी दान देता है, ये तो एक प्रकार का शुभ भाव है। अभी उससे भी आ जाए अच्छा वाला, वो तो और दान देगा देव शास्त्र गुरु के संबंध में, और उच्च वाला जो ज्ञान दान देगा, पुस्तकें छपाएगा लिखेगा, और उच्च कोटि का ऐसे जो अलग अलग जो है महाव्रत के परिणाम। और सबसे उच्च प्रकार का कौन सा है, एक करण लब्धि वाले जो आत्म सन्मुखता पूर्वक अभी शुद्धोपयोग में जाने वाले जो परिणाम है, वैसे वृत्ति उठी अंदर से, तो वो है सबसे उच्च प्रकार का शुभ भाव। वो भी शुभ भाव है अभी, उसको शुभोपयोग कहा, शुद्धोपयोग नहीं कहा, क्योंकि अभी विकल्पात्मक है ना, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है। शुद्धोपयोग के पहले वाले जो परिणाम होंगे उसको भी शुभ भाव कहा है, उसको भी छोड़कर वो शुद्धोपयोग में जाएगा। विकल्प करते रहने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा, वो विकल्प छूटकर आत्मा का अनुभव होगा, इसलिए उसको कहते हेय है। किस अपेक्षा से हेय, छोड़कर शुद्धोपयोग करने के लिए हेय, और छोड़कर पाप में जाने के लिए नहीं। तो शास्त्र में कहीं के ऐसा भी कहेंगे, पाप को छोड़कर पुण्य में आने जैसा जो नीचे वाली भूमिका के जीव है, अभी जिसको शास्त्र का अभ्यास नहीं है, उसको तो पाप छुड़ाकर कहते हैं अरे तू मंदिर में आ, तू नमोकार मंत्र गिन, तू शास्त्र स्वाध्याय में बैठ, यानी उसको तो पुण्य में, उसको लालच भी दिखाते। कैसे लालच दिखाते, कि देखो ये करेगा ना तो तुझे ऐसा पुण्य बनेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या तुझे संयोग अच्छे मिलेंगे, या ऐसा ऐसा इन्हें पुण्य का वहाँ लोभ दिखाकर भी जीवों को शुरू में ये प्रवचन सुनने में आने को कहते। वहाँ उनकी मान्यता, मुनियों की मान्यता ऐसी नहीं है कि ये पुण्य अच्छा है, परंतु सामने जो वाला जीव कहाँ कहाँ रुका है तो उसको जो है लोग देख कर, देखो तो यहाँ आएगा ना तो देखो तुझे अच्छी गति मिलेगी, तो सामने वाले जीव के अनुसार वहाँ उपदेश देते हैं। परंतु मान्यता में क्या है, शुभ छोड़कर शुद्ध में जाना। अब जो मुनि उपदेश दे रहे हैं वो उनका शुभ भाव है कि शुद्ध भाव, लिख रहे हैं विश्वास, परंतु मान्यता में क्या है, अरे ये छोड़कर मैं कब स्वभाव में चला जाऊं। चल रहा है कार्य वहां, शरीर की क्रिया भी हो रही है, राग भाव भी चल रहा है, परंतु मान्यता में मैं इसे छोड़कर शुद्ध में चला जाऊं, ऐसे निरंतर भावना बनी रहती है। शुभ भाव सहज होते हैं, देखो ये भी सम्यक जीव को भी मैं कौन सा शुभ भाव करना चाहिए ऐसा उसको प्रश्न नहीं उठता, कि उसे पता है कि ये शुभ भाव भी आने योग्य उस भूमिका में सहज आते हैं। मुझे विशिष्ट राग छोड़कर विशिष्ट राग करना है, ये करु की भावना आ गई ना, क्या अमुक राग छोड़ो और वैसा करो, इस तरह की राग विषय कर्तृत्व बुद्धि उसके नहीं होती। ये सम्यक जीव को सहज आते हैं शुभ भाव, उसको जानता है, उस रूप आचरण भी होगा उसका, परंतु करने लायक नहीं मानता है, और मुझे नहीं ये अच्छा नहीं, ये दूसरा भाव आता तो अच्छा था। तीर्थंकर प्रकृति योग्य षोडशकारणा भावना भाव तो मैं तीर्थंकर तो हो जाऊंगा, ऐसी भावना, यानी ऐसा उसको राग का राग नहीं होता। वो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को भी वैसे राग सहज आते हैं, मान्यता में वो भला नहीं जानता उसको, आते हैं। किसी को देव पूजा का राग होगा, किसी को स्वाध्याय का होगा, किसी को और किसका होगा, चिंतन मनन का भी होगा राग, परंतु ये ऐसे सोच सोच कर लाया नहीं जाता उसको। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात चौथे गुणस्थान वाले जीव की आत्मस्थिरता जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय और मन के विषय में उसकी अरुचि बढ़ती है। ये सारा चल रहा है उसका घर का कारोबार भी, फिर भी उसकी अभी रुचि उसमें से कम हो जाती है। पहले तो मिथ्या तो अवस्था में जैसे उसके राग द्वेष चलते थे, बाह्य पदार्थों में रुचि थी, अभी कपड़े ऐसे लाओ, ये यहाँ घूमने जाओ, वहाँ ऐसा करो ऐसा करो, यानी भोगने में और करने में जो रुचि थी, ये पंचेंद्रिय विषय में उसकी रुचि हट जाती है, ये संसार का रस नीरस हो जाता है। उसके दया के परिणाम आते हैं अपने कारण अन्य जीवों की विराधना हिंसा न हो, इसकी दक्षता यानी सावधानी उसके वर्तती है, उसके लिए वह प्रयत्नशील रहता है। पांच पापों से परावृत होने का वह प्रयास करता है, अपने से हिंसा असत्य चोरी कुशील न हो, परिग्रह सीमित रहे, इसके लिए वह बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करता है। यह जीव अनुव्रत धारण करता है, अभी तो है चौथे में, उसके ये परिणाम अभी छूट रही है, अन्य पापों से भी वो विरक्त हो रहा है और उसको ऐसे भाव आते हैं कि अभी ये इस सारा में टाल दू तो अच्छा, तो फिर वो बुद्धिपूर्वक अनुव्रत भी ग्रहण करेगा, पहले अनुव्रत ग्रहण करेगा वो, अर्थात चरणानुयोग के श्रावकाचार ग्रंथों के उपदेशानुसार आगम सम्मत व्रतों का प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करता है। ये प्रतिज्ञा कार्यकारी है, बिना प्रतिज्ञा के ऐसे पालना उसका कोई मायना नहीं है, उसका फल भी नहीं है कोई, तो प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करता है। पांच अनुव्रतों, तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतों का स्वरूप जानकर उनका पालन करता है। इसलिए पहले शास्त्र से जानना भी पड़ेगा ना, अभी हमने रत्नमणि श्रावकाचार में पढ़ा कि ये उनके नाम है, ऐसा उसका स्वरूप है, तो अपना कैसा है, अपनी भूमिका देखेगा, अपने परिणाम देखेगा, और ये प्रतिज्ञा अंगीकार करूंगा तो ये पलेंगे कि नहीं मेरे से, ये बराबर विचार करके फिर वो प्रतिज्ञा अंगीकार करेगा। ऐसे देखा देखी जब किसी का उपदेश सुनकर वो बहुत भावुक हो गया, उसने अंगीकार किया और बाद में पले ने फिर मन में ऐसे परिणाम होते काय को मैंने ऐसे लिए, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे जीव को द्रव्यलिंगी श्रावक या व्रती कहते हैं। अभी तो उसने बाह्यता अंगीकार की है, अब ऐसा जीव क्या करेगा, द्रव्यलिंगी श्रावक के जब शुद्धात्मा में लीनता पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़ती है, तब दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता बढ़ती है और उसे देश विरत नामक पांचवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। देखो ये पांचवे गुणस्थान का नाम क्या है अभी, हाँ देश विरत। यह बात ठीक तरह से ध्यान में लो कि द्रव्यलिंगी श्रावक हुए बिना भावलिंगी श्रावक अर्थात पांचवा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता, ऐसा ये सहज है। चौथे वाले के परिणाम ऐसे ऐसे मंद होते होते उसके ऐसे भाव आते हैं कि मैं अनुव्रत पालन करूं, वो अनुव्रत अंगीकार करता है प्रतिज्ञा पूर्वक, उसके बाद जब जो आत्मस्थिरता करेगा, अकेले गुण ये व्रत अंगीकार कर लिए इसलिए उसका गुणस्थान नहीं बढ़ेगा, उन व्रतों सहित जब आत्मस्थिरता करेगा तब उसका ऊपर का पांचवा गुणस्थान होगा और वो भी दो कषाय का अभाव होगा तब। उसी प्रकार व्रतों का ग्रहण करने मात्र से पांचवा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता, यानी उनके बिना भी नहीं होगा और केवल व्रत ग्रहण के लिए इसलिए भी नहीं होगा। जिसके अंतरंग में सम्यक दर्शन सहित दो कषाय चौकड़ी, कौन कौन से दो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ है और जिसने बाह्य में व्रत धारण किए हुए हैं, उसी के पांचवा गुणस्थान है। पांचवे गुणस्थान के जीवों के बढ़ती हुई वितरागता के साथ परिणामों के अनेक भेद पाए जाते हैं, है तो पांचवा गुणस्थान पर उसमें भी बहुत सारे भेद हैं। उनके स्थूल रूप से 11 भेद बताए हैं, किसकी बात चल रही है? पांचवे गुणस्थान वाले की। हाँ, ये तो बाह्य व्रत होंगे उसकी। अभी तो उसने व्रत अंगीकार किया है तो वो चौथे वाला, उसको भी पांचवे वाला नहीं कहेंगे। ऐसा ही हाँ, मुनि का भी ऐसा है। पहले द्रव्य लिंग बराबर आगम समझ जैसा है वैसा बिल्कुल निरतिकार पालन करेगा, उसके पश्चात अधिक आत्मस्थिरता होगी तो ही सातवा प्रकट होगा। और आत्मस्थिरता जब तक नहीं होगी तब तक वो बाह्य में मुनि है और अंतरंग में यथा योग्य, कोई पांचवे वाला, कोई चौथे वाला, कोई पहले वाला है। नहीं, बिना द्रव्य लिंग के नहीं। हाँ, तो ही एटलीस्ट उसको पहली व्रत प्रतिमा जो पांच जो अनुव्रत है वो प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार किए हुए होंगे तो ही वो चौथे वाला स्थिरता करके पांचवे में आएगा। यानी जब जब गुणस्थान ऊपर का होगा तब आत्म स्थिरता द्वारा होगा, उसी अवस्था में होगा। और ऐसा नहीं कि पहले आत्म स्थिरता कर लो ऊपर जाओ और बाद में अनुव्रत ग्रहण करो, ऐसा नहीं होता। अनेक वेद पाए जाते हैं, उनके स्थूल रूप से 11 वेद बताए हैं और वे 11 प्रतिमाएं नाम से प्रसिद्ध है। आपने ये सुना है ना, श्रावक की 11 प्रतिमाएं। ये पांच कहाँ है? तत्व ज्ञान में है क्या? अभी तत्व ज्ञान में। हाँ, अभी जो रविवार को संडे को क्लास चली ना उसमें ये बताई, श्रावकाचार ग्रंथों में उसका विस्तार सहित विवेचन किया हो। अरे, वितराग विज्ञान पाठमाला पुस्तक में, वितराग विज्ञान में अच्छा, श्रावक की 11 प्रतिमाएं नामक पाठ है, उसे तुम अवश्य पढ़ना। सम्यवृत्ति जीव के पांच अनुव्रतों के ग्रहण पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़ती है और सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। ये पहली प्रतिमा हुई, ये देव का दर्शन करना, उसके बिना पानी नहीं पीना, इसको दर्शन प्रतिमा नहीं कहते। ये दर्शन है सम्यक दर्शन। समय दर्शन तो चौथे वाले को भी है, तो पांचवे वाले में दर्शन प्रतिमा क्यों कहा? तो वहाँ पांच अनुव्रत वो अंगीकार करता है प्रतिज्ञा पूर्वक, और समय दर्शन में अधिक दृढ़ता होती है, अधिक आत्मस्थिरता बढ़ती है उसकी। मात्र देव दर्शन के नियम का पालन करना दर्शन प्रतिमा नहीं है। ये 11 प्रतिमाएं इस प्रकार है, अभी इसके नाम देखते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ये व्रत प्रतिमा वाला ये जो 12 व्रतों का अंगीकार करता है, कौन कौन से? पांच अनुव्रत है उसके और फिर तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत। सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, उसी को दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी कहते हैं। ये तो रात्रि भोजन तो पहले वाला भी कर लेता है और यहाँ क्या, ये तो यहाँ मन वचन काय कृत कार्य तनुमोदना प्रतिज्ञा पूर्वक सारा ही त्याग होता है उसको। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, और अकेले बाह्य में रात्रि भोजन का कितने नहीं है, उसकी उतनी वितरकता भी बढ़ी है ना, उसको भी लेना साथ साथ, उसको ये प्रतिमा कहते हैं। अकेले बाह्य में व्रत अंगीकार करना कोई भी, उसको प्रतिमा नहीं कही, क्योंकि पांचवे के ये जो 11 स्टेप्स बताए हैं उसमें वितरकता भी बढ़ रही है उसकी, उसकी ओर भी ध्यान देना। नहीं तो हमें लगता है कि ये वो भी रात्रि भोजन त्याग वाला, ये भी है, उसमें क्या फर्क है। तो इसकी पांचवे के योग्य और ये जो छठी प्रतिमा है उतनी योग्य, उसकी वितरकता भी अधिक है। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, ऐसे ये 11 प्रतिमाओं के नाम है। हाँ, उद्दिष्ट त्याग, देखो एक एक काम अर्थ देखते हैं। उद्दिष्ट त्याग का पहले बता दी, उद्दिष्ट यानी उनके लिए बनाया हुआ, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ। ऐसा क्या क्या हो सकता है? तो उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार और उनके उद्देश्य से बनाई हुई कोई वसति का। अभी आपके लिए मैं कोई घर बनाऊं और आपको दे दूं, तो वो घर बनाते समय जो कुछ हिंसा हुई तो उसका आपको पाप होगा, क्योंकि आपके उद्देश्य से बनाई है ना। ऐसे ही मुनि के उद्देश्य, ये मुनि की भी बात है और ये तो 11वें प्रतिमा से ये उद्देश्य त्याग हो जाता है। ग्यारहवें प्रतिमा वाला श्रावक है भी पांचवे गुणस्थान वर्ती है, उसको भी उनके उद्देश्य से जो आहार बनाएगा और उनको देगा और ये ग्रहण करेंगे, ये उनको पता चला कि ये अपने लिए बनाया है तो वो नहीं जाएंगे, वहाँ लेंगे भी नहीं। हाँ, तो उसकी त्याग वाली ये प्रतिमा है, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार का त्याग है उनको। हाँ, आहार लेने के लिए जाते हैं, ये शुल्लक और अयलक की बात है, तो वो भी जैसे मुनि आते हैं आहार के लिए वैसे ये भी आते हैं। तो पहले जो जिन्होंने पहला वह है ना परिग्रह त्याग वाला है, अनुमति त्याग वाला भी घर में रहे या मुनि संघ में रहे, परंतु वो संसारिक कोई भी कार्य में उनके अनुमति अनुमोदना नहीं देगा। घर के बच्चे पूछेंगे हम क्या करेंगे व्यापार में, ये क्या करना चाहिए, इसकी शादी वहाँ देना है क्या, वो सारा वो तो ब्रह्मचर्य वाला भी शादी ब्याह में वो हिस्सा नहीं लेगा, उसकी अनुमोदना नहीं देगा। ये अनुमति त्याग में व्यापार आदि में किसी में वो अपनी अनुमोदना नहीं देंगे, सलाह मसलत नहीं करेंगे किसी से। और ये उद्दिष्ट त्याग वाला है वो तो घर में रहता नहीं है, मुनि संघ में रहता है, और जब आहार के लिए आते हैं और उनको पता चलेगा अपने हम अभी गांव में आए और अपने लिए बनाए आए तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक के दो भेद है, शुल्लक और अयलक। हाँ देखो उद्देश्य यानी देखिए अभी कोई मुनिराज आए गांव में तो श्रावक को पता चला तो उनकी क्या इच्छा होती है, अपन मुनियों को आहार देंगे तो खास उनके लिए उन्होंने आहार बनाया, और मुनि को पता चले कि अपने लिए बनाया हुआ है तो जो बनाते हुए जो कुछ हिंसा बनी है उनके तो संसार है अहिंसा महाव्रत है, फिर भी जो भोजन बनाते समय जो कुछ हिंसा बनी है उसको अनुमोदना रूप पाप उनको लगता है, इसलिए अपने उद्देश्य से जो जो आहार बनेगा उनका उन्हें त्याग होता है मुनियों को। वैसे ही त्याग प्रतिज्ञा पूर्वक क्या ये ग्यारह प्रतिमा वाला श्रावक भी करता है, यानी जो उद्दिष्ट आहार का त्याग यहाँ यही से चालू हो जाता है और मुनियों को तो होता ही है।
मुनि तो भोजन के लिए आहार के लिए निकलते तो है।
हाँ ये भी आहार के लिए निकलते हैं। हाँ ये भी निकलते हैं मुनि संघ के मुनियों के साथ ही होते ना, पहले तो जब बड़े बड़े मुनि संघ होते थे और वहाँ तो श्रावक भी ऐसे व्रत अंगीकार किए हुए होते कि उनको भी वैसे ही शुद्ध भोजन करने का नियम होता है और वो अपने लिए बनाते हैं और अपने लिए बनाते हैं, और कोई मुनि आते हैं और भोजन करने के पहले घर के सामने दरवाजे में वो मुनि को पढ़ाने के लिए खड़े होते थे, उसके बिना भोजन नहीं ग्रहण करते थे। तो सहज ही जो कोई मुनि आएंगे तो उनका तो टाइम निश्चित है ना, तो उस समय वो चर्या के लिए निकलेंगे, तो ऐसा उचित उनको जैसे उन्होंने मन में लिया है कि ऐसे में कोई ऐसे स्त्री पुरुष एक साथ पड़धाने के लिए खड़े हैं या कोई कलश हुए या पीछे नारियल लेके खड़े ऐसे कोई भी मन में जो धारणा लेके निकलते हैं और ऐसा कोई मिले तो मैं आहार लूंगा ऐसे मन में वो लेके निकलते हैं। मौन होता है वो तो कुछ मांगते नहीं कुछ पूछते नहीं कि आज तुम्हारी क्या है क्या नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा उनको ऐसा लगे कि यहाँ उचित है आहार। और श्रावक तो पता है ना कि श्रावक घर के सामने उनके लिए आओ भोजन करो ऐसे कहने के लिए खड़े हैं, तब वहाँ जाके वो आहार लेते हैं। ऐसे हम घर में आए और कोई बेल बजा के आता है ऐसा नहीं होता।
इसलिए तो मैंने अतिथि देवो को कि भाई पहले के जमाने में ऐसा था कि ये जो पंचम गुरुस्थान वर्ती जीव जो होते थे जैसे कि वे स्वयं ऐसा मानते थे कि अगर हमें कोई ऐसा मिल जाए कि जो मुनिराज आ जाए और हमें उनका मतलब आहार दान का लाभ मिले, इसलिए रोजाना स्वयं उस टाइम पे वो कह रहे थे। आजकल तो सुबह 5 बजे गाड़ी पकड़ के बम्बई जाते हैं।
पहले तो ऐसे थे मंदिर में जब प्रदर्शन करने जाते थे तो पता चलता था कि आज मुनि आए हैं या कोई वहाँ कोई व्रती है, तो कोई ये भी नहीं मिले तो कोई अन्य भी जो श्रावक होगा समयदृष्टि होगा, इसने कहे ना उत्तम मध्यम जघन्य ऐसे पात्र दान में भी हमने देखा था ऐसे उत्तम पात्र, तो ऐसे बुलाकर घर में ले आते थे कि विदा अतिथि को खिलाए वो स्वयं नहीं भोजन करते थे, तो पहले ऐसे भोजन ही ऐसा बनता था कि वो अतिथि भी हमारे इसमें खा ले। अभी तो 2 जनों का भोजन बनेगा, हाँ तो हम तो गिनकर बनाएंगे। हाँ, तो श्रावक ऐसे पहले से चलती थी कि श्रावक भी अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता, उसको भी ये सारे नियम होते थे ना कि मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा, ये नियमित में ऐसे इसमें भी आता है हर एक बार में वो भी ऐसे त्याग की भावना करता है। तो बिना ऐसे हमारे यहाँ कोई मुनि भोजन करे तो ऐसे भी उसमें नमक डाल देगा नहीं, यानी सेंधव जो वापरते है वो डाल के नहीं बनाएगा, वो अलग से रखेगा रोटी में या दाल में ऐसे ये चावल में वो ऊपर से डाल के खाएगा। क्योंकि जिसको अभी नियम है ऐसा कि जिसको लवण का त्याग है, किसी एक रस का त्याग करते हैं, सत रस में से किसी रस का त्याग करेंगे वो तो ऐसे बता के नहीं आएंगे, तो पूछ पूछ कर ऐसे बताता है वो मुनि, तो कुछ बोल देंगे नहीं, मौन रहता है उनका, तो बताएंगा और ऐसे उन्होंने ऐसे अगर शंका होती है तो ऐसा हाथ में लेते ना, तो ऐसा करते फिर वो श्रावक बताता है कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर वो मुनि ग्रहण करता। समझो किसी ने घी का त्याग किया, किसी ने दूध का त्याग किया, तो वो श्रावक बता कर वो व्यवस्था है कि इसमें ये नहीं वो नहीं है, किसमें नमक नहीं है, ऐसा जो कुछ बताना है। किसी का ऐसा भी होता है कि आज एक ही धान लूं, तो किसी दो ही धान लूं, तो यानी एक तो हो गया गेहूं और दूसरा जो कुछ होगा दाल का होगा या कुछ होगा, तो चावल नहीं खाएंगे या दो कोई खाएंगे, ऐसे बहुत सारे उसमें होते। तो श्रावक भी उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, वो जानकार होते कि आहार किस विधि से देना है, किस तरह से देना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, पहले क्या देना है, बाद में क्या, ये सारी उसकी विधि होती है। तो उसकी भावना होगी ना मेरे यहाँ आज मुनि आहार ग्रहण करे, ये तो भावना हरे की होती है, तो रोज ऐसा बनाएगा वो। तो ये तो गांव में तो अभी भी चलता है, वहाँ तो मुनियों का आना जाना रहता है, तो वहाँ ऐसे जो व्रती होते वो तो अपना बनाते ही है और उनको ऐसी भावना बनी रहती कि अपने यहाँ भोजन हो जाए। अभी वो गुणस्थान उनका ही नहीं है, पांचवा और मनियो भी उनके सच्चे नहीं है, फिर भी ये सब जो विधि रूढ़ी चल रही है वो अभी भी चलती है गाँव में। देखो ये सारे 11 प्रतिमाएं के नाम हमने देखे, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावक के दो भेद है, शुल्लक और अलक। ये 11 प्रतिमा के नाम याद करना पड़े, हाँ करोगे ना? हाँ, शुल्लक दो वस्त्रधारी, हाँ सचित्त ने, अभी ये जो पान फूल फल जो है उसको कहते हैं सचित्त, ये वनस्पति जो है सचित्त वनस्पति और अचित्त, तो उसको अचित्त बनाने का तरीका होता है सचित्त चीजों को, ये हरी वगैरह उसमें हरी अलग है और सचित्त अलग है। जो फल वगैरह उसकी चटनी बनाते हैं या इसे बहुत बारीक बारीक काटते हैं, उस पर नमक और मसाला डालते हैं तो अचित्त बन जाता है, तो ये सचित्त का त्याग वाला सचित्त अवस्था में उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो ये तो शास्त्र में सारी बातें आती कि किस तरह से उसको लेना क्या है ना, उसका प्रोसीजर वो अचित्त बनाकर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ वो आए थे ना कोई चौरे जी, तो नारियल का पानी भी ऐसा नहीं लिया, तो फिर थोड़ा उसको थोड़ा सा गर्म किया, इसको कहते ना थोड़ा सा उन किया, तो फिर वो करके छान के फिर उन्होंने किया, तो ऐसे वो अचित्त हो जाता है।
उधर का पानी नहीं पीते, यहाँ क्या देंगे, नारियल पानी चलेगा?
नहीं, वो गर्म करके लाना बोला उन्होंने, गर्म करके छान के फिर उन्होंने किया। देखो जो प्रतिज्ञा लेते हैं उनको ऐसी वृद्धता नहीं रहती कि अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी क्या मिलेगा क्या, उनको नहीं मिलता तो उनकी शांति बनी रहती है। हम एक बार भोजन में लेट हो जाएगा कहाँ यहाँ, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उनके तो ऐसे ऐसे होते हैं नियम, अभी कुएं का जल बिना नहीं ग्रहण करो, तो पानी भी नहीं मिले किसी को पूरे दिन में, व्रती को भी पांच गुणस्थान वाले को भी बाहर कहीं जाना पड़े उसको, और पानी भी नहीं मिले, अभी यात्रा में गया तो सब जगह तो होगा नहीं कुआ भी, तो कभी तो हाँ, तो उसको छान कर उबाल के लेते ना,
तो
तो श्रावकों को उसको ठीक करना चाहिए जो हाँ उपयोग में लेते हैं, डेली यूज करते हैं, तो उसमें से वो तो अशुद्धियाँ भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लेते नहीं, जो व्रती है ना उनका तो नियम ही होता है, वो गर्म करके ही लेते हैं, उबाल के वो फिर 24 घंटे चलता है, नहीं तो फिर पहले ही वो छान के लेंगे नहीं जो श्रावक है, फिर छानने के बाद उसको उबालेंगे, तो उबला हुआ पानी 24 घंटे चलेगा, फिर उसको दोबारा छानने की जरूरत नहीं, थोड़ा गर्म किया हो तो उसके अलग अलग उसकी मर्यादा है, या फिर उसका उसमें लौंग डालते हैं कि ताकि वो उसका स्वाद बदल गया ना, उस पर फिर उसको गंदे वगैरह में से कुछ बदल जाता है, तो फिर वो प्रासुक बन जाता है, प्रासुक कहते हैं उसको, तो प्रासुक बनाने की भी अलग अलग विधि है, तो उस विधि से उसको प्रासुक बनाकर वो श्रावक उसका ग्रहण करता है, तो कौन सा पानी कितना चलेगा उसकी भी मर्यादा है, वो शास्त्र में जो बताई वैसे चलेगी उसमें। ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में अहिंसा का पालन विशेष रूप से होता है, ये सारी विधियां है जो ये नियम है जो व्रत है वो अहिंसा का पालन करने के लिए भी, अहिंसा का पालन विशेष विशेष रूप से ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं में होता है, पाप परिणाम घटते जाते हैं, फिर भी महाव्रतों का पालन नहीं हो सकता, अभी पांचवे वाला है ना, तो त्रसों की हिंसा तो टालता है, अभी एकेंद्रियों की हिंसा टालना, एकेंद्रियों की स्थावर जीवों की वो पूर्ण रूप से नहीं बनती, इसलिए पांचवे गुणस्थान को विरता विरत या संयमा संयम, विरत अविरत दोनों, या संयम असंयम एक साथ है ना, इसलिए संयमा संयम यानी पार संयम अनुव्रत है उसके, महाव्रत नहीं है। यह पांचवा देश विरत गुणस्थान मात्र कर्मभूमि के मनुष्य एवं तिर्यंचों को ही होता है, तिर्यंचों में संघी पंचेंद्रिय, क्योंकि संघी पंचेंद्रिय को ही चौथा होगा और संघी पंचेंद्रियों को ही पांचवा भी हो सकता है, तो भोग भूमि में होगा कि नहीं होगा आदिपली, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों को होगा कि नहीं होगा पांचवा गुणस्थान, नहीं होगा, और देवों में नारकी में तो किधर होगा, हाँ मनुष्य तिर्यंच कहाँ के, ये कर्म भूमि के, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच तथा देव और नारकी चौथा गुणस्थान प्राप्त करने की योग्यता होने पर भी, योग्यता है उनमें चौथे तक ही जाने की, पांचवा गुणस्थान उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता, उतनी अधिक आत्मस्थिरता करने की पर्यायगत योग्यता उनके नहीं होती, वो पर्याय ऐसे कि वहाँ उतनी योग्यता होती अधिक नहीं, ऐसा क्यों, हाँ बेटा वो योग्यता उनकी उतनी है, तो स्त्री को पुत्र क्यों पेट में आता है, पुरुषों को क्यों नहीं आता है, उनकी योग्यता नहीं होती, यही एक वास्तव उसके लिए उत्तर है। वैसे ये जो है देव नारकी और भोग भूमि के जीव चौथे इतनी तो आत्मस्थिरता हो सकती है, उससे अधिक नहीं होती। लौकिक में हम देखते हैं कि दया दान व्रत पूजा यात्रा भी करने वालों को धार्मिक कहा जाता है, लोगों को बाह्य त्याग की ही महिमा आती है, उसे ही व्रत संयम नाम दिया जाता है, नाम देना अलग बात, कौन से गुणस्थान में किस प्रकार के शुभ या अशुभ भाव हो सकते हैं, इसे जानने के बाद हमारी समझ में आता है कि कषायों की मंदता या तीव्रता पर गुणस्थान निर्भर नहीं है, उन पर वे अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यान है, यह निर्भर नहीं है, कषायों की जाति ही अलग है। देखो अनंतानुबंधी में भी इतने मंद परिणाम हो सकते हैं, देखो जो नौवे ग्रह में जाने वाले जो है मुनि जो अभी सम्य दृष्टि नहीं है, उनके कषाय कौन सी जाति के है, एकदम मंद है, जाति कौन सी है, अनंतानुबंधी है, देखो ऐसे उनकी तरफ देखेंगे तो ऐसे आहा ऐसा व्यक्ति कि ऐसे उच्च प्रकार के बिल्कुल शास्त्रोक्त पूरा निरतिचार पालन होगा व्रतों को, और ऐसों को श्रावक भी आके वंदना करेगा, उसका कर्तव्य है, क्योंकि बाह्य सारा उनके आगमानुकूल है ना, तो उनको आदर करेगा, उनको आहार दान भी करेगा सारा, परंतु फिर भी वो कौन से वाले है, अनंत अनुबंधी वाले, तो उनकी जाति कषाय उनकी जाति अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान वाला कोई जीव अति मंद कषायी समाधानी वृत्ति वाला पाप भीरु और व्रतों का पालन करने वाला हो। इससे विपरीत पांचवे गुण स्थान वाला यानी जो दो कषाय का अभाव है ऐसा जीव कोई होगा तो व्यापार आदि उद्यम करता होगा, युद्ध भी करेगा, उसके स्त्री पुत्र आदि परिवार भी होगा, सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ भी दिखेगा। बाह्य आचरण से उसके गुणस्थान का अनुमान हम नहीं कर सकेंगे। चौथे वाले का तो होगा ही नहीं, पांचवे वाला भी जो कोई दर्शन प्रतिमा वाला होगा तो उसके तो उसने प्रतिज्ञा पूर्वक व्रत अंगीकार किए, पर बाह्य में तो वो सारा व्यापार वगैरह कैसे है, अभी अनीति से नहीं करता, नीति से करता है, न्याय से करता है, अभक्षण नहीं कर रहा है, परंतु वो तो बहुत कुछ उसमें अंतर नहीं दिख रहा है। इसकी तरफ देखने जा रही है तो क्या व्यापार धंधा करता है ये कैसा है, और दूसरा कोई ऐसा होगा कि जो मुनि रिक्शा लेकर जंगल में रहता हो और है वो पहले गुणस्थान वाला, तो बाह्यता किसकी महिमा आती है, अरे वो इतना संयम है, ऐसा ही लगता है कि यही संयम है और यही मोक्ष मार्ग है। पहले हमने देखा था पांच अनुव्रतों को प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार किया। पांच अनुव्रत कौन से? नहीं नहीं व्रत में वो बारह व्रत है उसके, तीन गुणव्रत चार शिक्षा व्रत भी अंगीकार किए उसने। पांच अनुव्रतों का प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करना और सम्यक दृष्टन की दृढ़ता अधिक आत्मस्थिरता वो भी लेना उसके साथ, इसलिए उसको दर्शन प्रतिमा कहा। हाँ इसमें हमने देखा था, हाँ खाली दर्शन करना ये नहीं है दर्शन प्रतिमा, उसके पहले भी है लिखा है। हाँ देखो नीचे से दो, ये जहाँ 11 प्रतिमाएं लिखी है ना 91 पेज पर, तो 11 प्रतिमाएं के ऊपर चौथी लाइन सम्यक दृष्टि जीव के पांच अनुव्रतों के ग्रहण पूर्वक, ग्रहण किया ना उसने प्रतिज्ञा पूर्वक ग्रहण किया, आत्मस्थिरता बढ़ती है और सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। पांच अनुव्रत तो ग्रहण करता है, नहीं तो चौथे पांचवे में डिफरेंस कैसे करोगे आप, ये कर लेना पड़ेगा अभी ना, नहीं तो बहुत। अभी रुकते हैं यहीं पर क्योंकि फास्ट पढ़ने खाली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो इससे आगे फिर मुनि के गुणस्थान में जावाणी के ज्ञान तै तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देश भी।